ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਸਨੇਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪਵਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਸਰਗੁਣ, ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਿਰਗੁਣ, ਜੋ ਅਸਥੂਲ ਸਰਗੁਣ, ਜੋ ਸੂਖਮ ਨਿਰਗੁਣ, ਜੋ ਰੂਪਮਾਨ ਸਰਗੁਣ, ਜੋ ਅਰੂਪ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਤਰਾ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੂਝਮਾਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਫਿਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼, ਪਹਿਲੇ ਅਸਥੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਫਿਰ ਸੂਖਮ, ਪਹਿਲੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਕੁਛ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਸਤਾ ਆਈ, ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੇ ਅਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨ ਮਤ ਸੀ, ਬੌਧ ਮਤ ਸੀ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਚਲੀਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਗੁਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਰੂਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਆਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਉਸਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। बावन अखरी रिश्ते बड़े सुंदर बोल ने, चचा रचत चित्र है भारी, तज चित्रे चे तो चितकारी, चित्र बचित्र है अवझेरा, तज चित्रे चित्राख चितेरा। भगत कबीर जी दी बावन अखरी। आप कहें मैं चचे तो चार शब्द तो यह प्रेरणा ली है, हर अखर किसी दिशा की तरफ संकेत कर रही है और अखरां का जोड़ ही तो ज्ञान बनता है। अखरी नाम अक्सी अखरी सारा, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिरसन जोग बखाण। अखरां का जोड़ ही गाल बनता है, अखरां का जोड़ ही बंदगी बनता है, अखरां दा जोड़ ही तकरार बनती है, अखरां दा जोड़ ही ते विचार बनती है, अखरां दा जोड़ ही झगड़ा है, अखरां दा जोड़ ही ते गीत है संगीत है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। मनुखी दुनिया विच जितने संजोग बनते ने अखरां करके, जितने संजोग टूटते ने अखरां करके, दो भरावां दे चनाचाती हो गई दो बोल करके, दो दुश्मन बगलगीर हो गए ने दो बोलां करके। अखरां दे जोड़ टूटे दिलां नूं जोड़ सकते ने, संजोग बना सकते ने, अखरां दा जोड़ दिल तोड़ भी सकते ने। खैर इत भी विचकार गल आ गई, सब कुछ अखरां दे चाहे चाह चचा। कबीर कहिंदे ने मैनू ये प्रेरणा दे रहा है, चचा रचत चित्र है भारी, तद चित्रे चे तो चितकारी। चूंकि चित्रकार असीम है, एक कलाकार असीम है, तो इसकी कला भी असीम है, इसका चित्र भी इतना ही वड्डा है जितना वो आप वड्डा है। कृत तो करते दी महानता का पता चलेगा, बेसुरा गा रहे है ताल देच नहीं है तो पता चल जाता है इस मनुख की संगीत की साधना कितनी हो गई, तो कुछ भी नहीं है। ये ताल देच भी नहीं है, सुर देच भी नहीं है, तो सुर ताल नू ही तो संगीत कहते ने, गा रहे है संगीत ना सुर ना ताल। सुर दे चाहे ताल दे चाहे समय नू बन के रख देता है। इस कृत तो संगीतकार दी इस कृत तो, क्योंकि संगीत संगीतकार दी कृत है, तो करते दा पता चलता है मामूली संगीतकार नहीं, बहुत वड्डा है, महान है। अपने विचों इसने ऐसे अदुत्ती संगीत नू जन्म दिता है, तो वो परिपूर्ण परमात्मा हर पख दा कला दा ज्ञानी है। तू सर्व कला का ज्ञाता, परमात्मा वर्गा होर कोई संगीतकार नहीं, और सारा संगीत उसे तो आउंदा है। परमात्मा वर्गा होर कोई कवि नहीं, सारी कविता उसे तो आउंदी है। परमात्मा वर्गा होर कोई विज्ञानक नहीं, सारा विज्ञान उसे तो आउंदा है। परमात्मा वर्गा होर कोई ज्ञानी नहीं, सारा ज्ञान उसे तो आउंदा है। वो कला का सागर है, वो गीत का सागर है, संगीत का सागर है, ज्ञान का सागर है, सारी बरखा सागर करके है, सारिया नदियां का चलन सागर करके है, सारा गीत संगीत ज्ञान विज्ञान परमात्मा करके है, ईश्वर करके है, सब कुछ उसे तो आंदा है। बहुत वड्डा कलाकार है। एक गल वखरी है कि साड़ी कोई तस्वीर बना देवे, कि तस्वीर दे बड़े सोने रंग भर देवे, असी दाद देंदे थकते नहीं, भी ये ते कमाल दा चित्रकार है। पर गजब दी गल जिसने जीवदी जागदी ये तस्वीर बना दिती, उस चित्रकार नू कदे चेते नहीं कीता। जो एक गुलाब दे फुल दा चित्र बना दे, असी कहिंदे आ इस दे हाथ चुम लईए ऐसा सुंदर फुल, बनाया है इसने, इतना खूबसूरत इत जीवदा जागदा लग रहा है, मुर्दा है, तस्वीर है, फिर भी दाद दे रहे हैं, कला है। और जिसने जीवदा जागदा फुल बनाया उस कलाकार का कभी ख्याल भी ना किया। पुराने जमाने में किसी महापुरुष की महिमा इस तो नापी जाती सी इसके कोल कला कितनी है। तो मैं जो सनातन मत के अवतारी पुरुषों बारे पढ़िया, कोई दो कला दा अवतार, कोई तीन कला अवतार, कोई चार कला अवतार, राम नू कहिंदे ने 14 कला अवतार, कृष्ण नू कहिंदे ने 16 कला संपूर्ण अवतार। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इशारा भी करते हैं 16 कला संपूर्ण भलिया अनंत कला होए ठाकर चढ़िया। 16 तरह की कला इस दे निपुण सन श्री कृष्ण। किसी एक कला दे भी मनुख पूर्ण तौर पर निपुण नहीं हो सकता। मैं देखा जो चोटी दे शायर ने कवि ने वो संगीतकार नहीं है। जो चोटी का संगीतकार है वो चित्रकार नहीं है। और जो चित्रकार है वो कोई अजीम संग तराश नहीं है। और जो चोटी दे संग तराश ने वो कोई महान नृत्यकार नहीं है। और जो महान नृत्यकार है वो कोई चोटी का साइंटिस्ट नहीं है, विज्ञानिक नहीं है। किसी एक कला दे ही मनुख पूर्ण तौर पर निपुण हो सके ये भी औखा है। पर कोई 16 कला दे निपुण हो जाए तो आम बंदे ने तो हैरान होकर कहना सी ये आम इंसान नहीं, ये तो कोई अवतार है। 16 कला संपूर्ण फलिया। श्री कृष्ण बहुत अच्छे नृत्यकार सन, बहुत खूबसूरत नृत्य कर लेंदे सन, बहुत अच्छे संगीतकार सन, बहुत अच्छे वजंत्री सन। मुरली जिस ढंग दी वजांदे सन मनुख ते होश गवा बैठदे सन, पशु पक्षी भी दाणा दुणका चुनना भुल जांदे सन, चलना भुल जांदे सन। दूर क्यों जाइए इस झलक नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी पेश किया है कृष्ण की इस झलक नूं। एक गल वखरी है इस देश कोल फुरसत कित्थे है कि कोई गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पढ़े। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 24 अवतारां की कथा लिखी है, ज्ञान प्रबोध लिखे है, अकाल उसत लिखे है, चंडी चित्र लिखे है, विचित्र नाटक लिखे है, रामा अवतार लिखे है, कृष्णा अवतार लिखे है, जफरनामा लिखे है। पढ़न का वेल किस को है, कौन पढ़े? लोगों ने सिर्फ इतना ही जाने है बहुत अच्छी तलवार चला लेंदे सन, बहुत अच्छी बंदूक चला लेंदे सन, बहुत अच्छी तीर कमान चला लेंदे सन। बिल्कुल चीदा चीदा मनुखा नूं पता है उन्हां दी कलम विचों रब्बी नगमे निकलदे सन, उन्हां दी जबान चो रब्बी संगीत निकलदा सी, उन्हां दी आत्मा चो रब्बी गीत निकलदे सी। ये बहुत घट लोगों नूं पता है। ये तलवार चलानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते ये कहने ने मेरा शौक नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। ये तलवार चुकने मेरी खुशी नहीं है, मेरी मजबूरी है। साफ लिखे जबरनामे, बलाचार गी दरम्या आमदम बतद बीरो तीरो तुफंग आमदम। है औरंगजेब इत मैं लाचार होके तलवार चुक ली है, मेरी खुशी नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, हो भी नहीं सकता। हेमकुंड दा तपेश्वर दिन रात ध्यान साधना विच रहा होवे, पुराने संस्कार ते ए होवन, लेकिन मजबूरी इत्थे तक अपड़ गई होवे कि तलवार चुकनी पैवे। और गजब दी गल इस सच्चाई नूं सतगुरु ने कबूल कर लिया, बालाचार जी लाचार होके मजबूर होके ए मैं तलवार चुकी है। बालाचार जी दरम्या आमदम बतद बीरो तीरो तुफंग आमदम। ये तुफंग जो मैं पकड़ ली, ये बंदूक जो मैं उठा ली, ये तीर कमान जो मैं पकड़ ली, ये जो मैं तलवार चुकन ली, ऐ औरंगजेब ये मेरा शौक नहीं, ये मेरी खुशी नहीं, ये मेरी मजबूरी है, मेरी लाचारी है। मैं देखिया तेरा दिल दिमाग इतना पत्थर है, ना ज्ञान का असर कबूल करता है, ना किसी दलील नू मनदा, ना शांति दे संदेश नू मनदा, तो मजबूरन मैनू पत्थर नू तोड़न लई पत्थर चुकना पे, मजबूरन। मेरी मजबूरी है, मेरी खुशी नहीं। दुनिया के जितने अवतारी पुरुषों ने अगर शस्त्र चुके है, धनुषबाण राम ने चुके है, सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, मोहम्मद साहब ने भी तलवार चुक ली, उसने इस्लाम लिख दिता अमन सलामती ली। ऐसे पुरुषों की यह मजबूरी रही है, वरना उन्होंने स्वभाव दे रब्बी गीत है, रब्बी संगीत है, समाधि है, आनंद है, अडोलता है। छोटी जिहा ठोकर खा के मनुख सिकवियां नाल भर जांदा है, गिलियां नाल भर जांदा है, पता नहीं रब है कि नहीं। आनंदपुर साहब लुटिया जा चुके हैं, बर्बाद हो गए हैं, सिख मारे जा चुके हैं, परिवार उजड़ गए, बच्चे शहीद हो गए हैं, पर फिर भी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, ठीक है मेरे को शस्त्र नहीं रहे, बस्त्र नहीं रहे, महल नहीं रहे, धन नहीं रहा मेरे को, मेरे साथी नहीं रहे, मेरे बच्चे नहीं रहे, पिता का साया नहीं रहा, की होया? ये कुछ भी नहीं, मेरा खुदा तो मेरे हिरदे च बैठा है, ते जिन्ने चिर तक वो मेरे साथ है, ऐ औरंगजेब मेरी तलवार तेरे कदमों नू रोकती रहे, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। ठीक है मेरे को फौज नहीं, धन नहीं, संपदा नहीं, महल माड़ियां नहीं, किले भी ढेरी हो गए, पर मेरे को जगत दा मालक जो खुदा है उसकी याद है, तो जितने चिर तक मेरे सीने विच ओ बैठा है मैं लावारस नहीं, मैं तेरे कदम अज भी रोकांगा तलवार ना। इन्ना हौसला, माड़ी मोटी गल हो जाए बंदा कह दें पता नहीं परमात्मा है कि नहीं। तो मैं अर्ज कर रहे हैं, इस रब्बी शायर ने रामा अवतार लिखे है, कृष्णा अवतार लिखे है, चंडी चित्र लिखे है, भगवती की वार लिखी है, अकाल उस्तत लिखी है, विचित्र नाटक लिखे है, और ऐसे ऐसे छंद जो कविता का एक कमाल है, ऐसे ऐसे गीत जो कहना पैंदा है कोई अवतारी कलाकार ही ऐसा लिख सकता है, ऐसा कह सकता है। आपकी दृष्टि चली गई द्वापर देश, जो कृष्णा अवतार आपने लिखे, काश ये देशवासी किधरे पढ़ दे, काश किधरे देशवासी तुलसी कृत रामायण दे नाल नाल, वाल्मीकि रामायण दे नाल नाल रामा अवतार गुरु गोबिंद सिंह जी का पढ़ दे, ते कुछ बहुत मिलता, या असी कुछ इस ढंग का माहौल बना दे, ना असी यतन कीते ना अगलिया ने कुछ इस रंग के यतन किए। खैर ये विस्कार गल आ गई, पातशाह की दृष्टि पहुंच गई द्वापर दे। कई साल तो चंगी बारिश नहीं हो रही, जमुना का पानी सुक गया, बनस्पति भी सुक गई, इस खुश्क माहौल मौसमी खिजान बैठे श्री कृष्ण आप दी दृष्टि एक बांस दे बूटे ते चली गई, उहदे च एक सोटी तोड़ी, लोहे दे औजार नाल उहदियां सत सुरां कीतियां, सत सुराख, बांस नूं सुर दे च करन दी कोशिश कीती, बांसुरी, बांस सुर दे च हो गया, बांस दे चों सुर निकली, उस सुर केड़ी निकली, धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस उत्ते 75 छंद लिखे ने कृष्ण अवतार दे। रूखन ते रस चोवन लाग, झरे झरना गिरते सुखदाई, घास चुगे ना मृग बन के, खग रीज रहे धुन जा सुन पाई, देव गंधार बिलावल सारंग, कीरज के जह तान बसाई, देव सवै मिल देखत कौतक, जो मुरली नंद लाल बजाई। नंद दे पुत्र ने ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਧੁੰਨ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਰੁੱਖਨ ਤੇ ਰਸ ਚੋ ਨ ਲਾਲ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਸ ਟਪਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਕ ਝਰਨੇ ਵੀ ਵਗ ਤੁਰੇ। ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਧਰੇ ਲਿਸ਼ਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਖੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਛੁਪ ਗਏ ਵੋ ਸਾਜ਼ੇ ਹਸਤੀ ਛੇੜ ਕਰ, ਅਬ ਤੋ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਐ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਝਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗੀਤ ਨਾਦ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦਾ, ਘਾਸ ਚੁਗੇ ਨਾ ਮ੍ਰਿਗ ਬਣ ਕੇ, ਖਗ ਰੀਝ ਰਹੇ ਧੁਨ ਜਾਸਨ ਪਾਈ। ਇਹ ਧੁਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਵ ਗੰਧਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਰੰਗ, ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਸਾਰੰਗ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਧੁਨ ਛੇੜੀ, ਕਦੀ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ, ਕਦੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰ ਦੀ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਨ੍ਰਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 16 ਕਲਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 16। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ 16 ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਠਾਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਕਲਾ ਹੈ ਅਨੰਤ, ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤੋਂ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤੋਂ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰ ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਥ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਾਤਾ, ਅਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਾਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੁਛ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਕੁਛ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੂਪ ਹੈ ਕੁਛ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰੂਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸਥੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਅਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, दुनिया है और जो अरूप है वो आत्मा है, वो ईश्वर है। लेकिन ये रूपमान अरूप नहीं होया, ये अरूपमान रूपमान होया है। मैं लवज फिर दोहरावा, रूप तो अरूप नहीं होया, अरूप तो रूप होया है। रूप प्रगट अरूप गुपत, दरख्त प्रगट है जड़ा गुपत, मकान प्रगट है बुनियाद गुपत, संसार प्रगट है निरंकार गुपत। उस अरूप तो यह रूप होया, रूप तो अरूप नहीं होया, वो अरूप ही रूपमान होया, वो अरूप रूपमान होया। कहने ने जो रूप नाल जुड़ गए हैं वो कभी दुख दे चौवेगा, कभी सुख दे चौवेगा, कभी हसेगा कभी रोवेगा, सारी जिंदगी दुबदा दे च रहेगा। क्यों? रूप उस अरूप ने ऐसा बनाया है, उस दे च एक नहीं है दो ने। उस एक तो ये जो रूप होया है इसका विभाजन है, ये दो ने। संसार विच एक नहीं दो ने। संसारी किसनों कहते ने जो दो दे जींदा है, संत किसनों कहते ने जो एक दे जींदा है। बस मूल गल इतनी मैं कहनी, कौन है संसारी जो दो दे जींदा है? तो सारा संसार इंज कह लो संसारियां नाल भरिया है। कदी कदाई कोई संसार तो उच्चा उठता है, कदी कदाई ये संसार हर एक की सुरत में अपनी तरफ खिंचता है। ये तो विज्ञान की पकड़ आई कि जमीन दे कशिश है, जमीन हर चीज में अपनी तरफ खिंचती है। जमीन की पकड़ इस कशिश के दायरे तो कोई चीज उच्ची उठ जाए तो फिर जमीन नहीं खिंच सकती। लेकिन जितने चिर तक इसकी कशिश का दायरा है, जिथे तक एक अंदाजे के मुताबिक कोई 400 मील की बुलंदी तक इसका दायरा है, खिंचेगी हर चीज में, खिंचेगी अपनी तरफ। कोई इस कशिश के दायरे चो लंघे। संत की पकड़ दे होर गल भी आई, इस जमीन सिर्फ अस्थूल नू ही नहीं खिंचती, मनुख की सुरत नू भी खिंचती है। सुरत उच्चे करिए जमीन खिंचती है, अगर धन करके सुरत थले आ गई है तो धन जमीन है, रूप करके सुरत थले आ गई है तो रूप जमीन है, खाक है और की है। सब कुछ इस मिट्टी तो मिलता है, सब कुछ जमीन दे रही है। सुरत थले हो गई है किधरे पदार्थ करके, तो पदार्थ ते धरती है, सब कुछ धरती देख है।